نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج تراویح میں آپ نے نویں پارے کی سماعت فرمائی ہے، اس کی تلاوت آپ نے سنی ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا. کل ہم نے آپ سے یہ بات ذکر کی تھی کہ آٹھویں پارے کے آخر میں بعض انبیاء کا ذکر آیا ہے، اسی ضمن میں شعیب علیہ السلام کا ذکر، جن کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کا ذکر بھی ہے، اور وہی ذکر چلتے ہوئے نویں پارے کے شروع میں یہ بات کہی گئی ہے. یہ بات ہم نے بار بار ذکر کی گئی ہے، ذکر کی ہے یہاں درس میں، کہ یہ جو پاروں کی ترتیب ہے اس میں مضمون کی رعایت نہیں ہوتی ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے والی آیت اور بعد والی آیت دونوں ایک ہی ٹاپک ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے آج جو بات ہم پیش کر رہے ہیں تھوڑا پہلے سے جوڑ کر کے پیش کر رہے ہیں. شعیب علیہ السلام کو مدین کے علاقے میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، اور اپنی قوم میں جب انہیں رسول بنا کر کے بھیجا گیا تو ان کی قوم کی ایک خاص بات اس میں ذکر کی گئی ہے، جو ان کی قوم کی برائی کے طور پر ہے. بت پرستی، شرک، یہ تو عام سی بات تھی جب انبیاء کرام مختلف قوموں میں بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، تو ہر رسول کی دعوت یہی تھی کہ بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی توحید کی طرف آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو. وہ دعوت شعیب علیہ السلام کی دعوت میں بھی وہ چیز موجود ہے، لیکن ایک اور چیز جو ان کی قوم میں پائی جاتی تھی، ایک خاص قسم کی برائی، وہ برائی ہے کہ وہ لوگ ناپ تول میں بڑی کمی کرتے تھے. ناپ تول میں کمی کا معاملہ، لوگوں کو کوئی چیز دینا ہو تو کم کر کے دیتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کم کر کے دیں. یہ ناپ تول میں کمی، یہ ان کی قوم کی خاص برائی جس کا ذکر کیا گیا. اور جب شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور یہ قوم اس عذاب کی زد میں آئی اور سب کی سب ہلاک کر دی گئی. جب شعیب علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، یہ چیزوں کو کم کر کے دینے کا جو مزاج ہے، سامنے والے کو دھوکہ دینے کا یہ مزاج، یہ بھی ایک کلچر ہے، ایک مزاج ہے لوگوں کا، جو بہت ساری قوموں میں پایا جاتا ہے. ان کی قوم میں یہ چیز بہت زیادہ تھی. اگر آپ یہاں دیکھیں ہمارے اپنے ملک میں بھی، تو لوگوں میں یہ مزاج آپ کو بہت ملے گا. کسی زمانے میں جب لوگ تولتے تھے ترازو پہ، ہاتھ سے تولتے تھے، تو ڈنڈی بہت مارتے تھے. بعد میں جو ہے وہ چیزیں ختم ہوتی گئیں اور ترازو جو ہے بدلتے گئے، الیکٹرانک ترازو آئے تاکہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ ऑटो रिक्शे पे जो मीटर होते थे उसमें भी कुछ ऐसा कर देते थे कि वो मीटर जरा तेजी के साथ भागे तो बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो है शुरू हुए। तो ऐसी चीज है, इस तरह का मिजाज हमारे यहाँ इस मुल्क में भी पाया जाता रहा है। वक्तन फवक्तन उसकी इस्लाह की कोशिश की जाती रही है, लेकिन ये परेशानी रहती है। एक बड़ा अजीब सा मामला है कि आदमी अपना काम निकालने के लिए यहाँ ये भी होता है कि कुछ ना कुछ जो है सामने वाले को पकड़ा दो, हमारा काम जो है निकल जाएगा। वो एक कल्चर होता है, एक जीने का अंदाज बन जाता है लोगों का। ऐसे ही एक कल्चर और भी है जिसे वीआईपी कल्चर कहा जाता है, यानी जिसको समझते हैं कि इनका मकाम बड़ा ऊंचा है और ये ऊंचे मर्तबे वाले हैं, इनको कहीं के वजीर हैं, कुछ और मामला है। वीआईपी कल्चर जिसे कहा जाता है, आजकल ये लफ्ज बहुत मशहूर है। वो कल्चर जगह जगह देखने को मिलता है, यहाँ तक कि मुख्तलिफ इबादत गाहों में भी उसका ख्याल होता है, वीआईपी कल्चर का लिहाज होता है। इस्लाम ने इसको भी खत्म किया है। आज असल एक बात ये जिक्र की गई और मुझसे कहा गया कि मैं ये बात नसीहत के तौर पर जिक्र करूँ, इल्म के तौर पर जिक्र करूँ। ख्वातीन के हिस्से से ये बात आई है और लोगों ने मुझसे कहा कि मैं ज़रा उसकी तरफ तवज्जो दिलाऊँ कि अब यहाँ मर्दों का जो मामला होता है तो हम यहाँ रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसे वीआईपी कल्चर से कोई ताबीर कर सके। मस्जिद ये अल्लाह का घर है, इसमें कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जहाँ ये महसूस होने लगे कि यहाँ लोगों के दरमियान तफरीक की जाती है, किसी को आगे किसी को पीछे किया जाता है। ये कल्चर इस्लाम इसका कायल नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। इस मस्जिद में जब लोग आते हैं तो सब की सब बराबर है। हो सकता है एक मालिक हो और एक उसका नौकर हो, लेकिन दोनों आएंगे तो एक ही जगह खड़े होते हैं। बहुत मशहूर जुमला है ये कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। महमूद बादशाह था और अयाज उसका जो है नौकर था, गुलाम था, लेकिन जब मस्जिद में आएंगे अल्लाह के घर में तो सब अल्लाह के बंदे हैं। यहाँ सब बराबर हैं, सबको एक सब में खड़ा होना होता है। यहाँ ऐसा मामला नहीं है कि जो बहुत ज्यादा ऊंचे मतलब, यहाँ तक कि चाहे मस्जिद का जिम्मेदारी क्यों ना हो, उसके लिए कोई जगह खाली कर दी जाए, आगे से किसी आदमी को हटा करके उसके लिए जगह बना दी जाए, ऐसा शरीयत के अंदर ये चीज जायज नहीं है। आपने इस मस्जिद में महसूस किया होगा, अक्सर मस्जिदों में ऐसा होता है कि लोग बच्चों को, बच्चे जो खड़े होते हैं उनको जो है निकाल करके सबसे खुद खड़े हो जाते हैं और बच्चों को बाहर कर देते हैं या पीछे कर देते हैं। आप इस मस्जिद में देखते होंगे कि बच्चे भी जहां खड़े हो जाते हैं वो वहां खड़े रहते हैं, उन्हें निकाला नहीं जाता। काफ़ी दिनों से इस पर मेहनत की गई कि जो आया जब आया जहां जगह मिली वहां खड़ा हो जाए, यही शरीयत का हुक्म है। यहां किसी को आगे की सबसे निकाला नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, किसी और के लिए जगह खाली नहीं की जाएगी। जब जो आया जहां उसे जगह मिल गई वहीं खड़े हो जाए। एक आदमी आगे खड़ा है, सब में जगह खाली है, अभी शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है कि नहीं भी जरा उसका कपड़ा साफ नहीं है, मैं उसके पास कैसे खड़ा हूँ, इंतजार करें दूसरा कोई खड़ा हो जाए तो मैं दूसरी सब में खड़ा हूँ, या वो जगह छोड़ करके दूसरी सब में खड़े हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज नहीं होगी, अगर वो ऐसे छोड़ करके खड़ा हो गया उसकी नमाज ही नहीं होगी। मस्जिद में जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद ही कहाँ हल हुआ। यहाँ तो एक सब में सबको खड़ा होना है और एक अल्लाह के सामने सबको रहना है, सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नजदीक सब बराबर हैं। जो जिसको भी अल्लाह ने दिया है, जितना दिया है वो तो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह के नजदीक तो सब बराबर हैं, कोई फर्क थोड़ी नहीं। अगर कोई फर्क होता है तो उसके तकवे की बुनियाद पर होता है। लेकिन ख्वातीन की तरफ से ये शिकायत आई और मुझसे ये कहा गया कि मैं ये मसला जिक्र करूं कि अब चूंकि निगरानी का मसला होता है, देखभाल का मसला होता है और जो है इंतजाम का मसला होता है, तो मस्जिद की तरफ से किसी खातून को मुतय्यन कर दिया जाता है कि औरतों के इंतजाम भी वो देखते रहें, क्या जरूरत है, क्या परेशानी है, वो करती रहें। लेकिन होता ये है जो हमारी, हमने कहा कभी कभी हमारे मुल्क में भी इस तरह का कल्चर होता है तो वो चीज़ आ जाती है कि मस्जिद में बास ख्वातीन आती हैं तो उसे कुछ पैसे दे दे दिया करती हैं। होता है, आप जानते हैं कि वो सफाई करने के लिए कोई, हमने ये भी देखा कि वो बाकायदा हुकूमत की तरफ से मुतय्यन होती हैं औरतें सफाई के लिए, लेकिन लोग फिर भी कुछ ना कुछ उसे पका देते हैं। तो अब हो सकता है वो हमदर्दी के लिहाज से करते हों, लेकिन उससे वो उस खातून की जो सफाई करती है और उसको हुकूमत ने रखा है इस काम के लिए, उसको एक आदत सी बन जाती है, वही काम करना चाहेगी जहां उसको दो पैसे मिलते हैं, जहां नहीं मिलते। हालांकि चाहे उसका काम है, उसे वो करना चाहिए, लेकिन वो एक आदत सी बन जाती है। तो ऐसे ही उसके नतीजे में ये हुआ कि उस खातून की तरफ से ये गलती हो जाती है कि औरतों के दरमियान तफरीक कर देना, कुछ औरतों को हटा करके उन औरतों को आगे जगह दिलाने की कोशिश करना जिन्होंने कुछ पकड़ा दिया था या कुछ दे दिया है, जिनसे कुछ मिलने की उम्मीद है, ये गैर शरई चीज है। हमें इसमें एहतियात करना चाहिए। उन औरतों के लिए ये बात कहने के लिए मुझसे कहा गया कि पहले कोई भी खातून जो यहाँ पर खिदमत के लिए रखी गई हो, उसे इस तरह से कोई चीज़ जो है दे करके कुछ मस्जिद के ताल्लुक से मुराद हासिल करने की जो है ये कोशिश, ये गैर शरई चीज़ है। देना है अल्लाह के नाम पर, दे आदमी। गरीबों की, मिस्किनों की मदद करना है, दिल खोल करके मदद करे, उससे मना नहीं है। लेकिन ये कैफियत जो पैदा हो जाए कि उस औरत का फिर ज़्यादा ख्याल होने लगे, दूसरे जो हैं उनका कोई ख्याल ना हो, तो ये चूंकि मस्जिद में इस तरह की चीज़, इस तरह की तफरीक जायज नहीं है। मस्जिद में जो भी आया सब अल्लाह के लिए आए हैं, सब अल्लाह के लिए मस्जिद में हाजिर हुए हैं, सब बराबर हैं, सारी ख्वातीन भी बराबर हैं, यहाँ जितने भी मुसल्ली हैं सब बराबर हैं। तफरीक का कोई मामला नहीं होना चाहिए और हर एक को इसका ख्याल, जब आए जहाँ जगह मिली वहीं पर खड़े हो गए, जहाँ जगह मिली वहीं खड़े हो गए। और अगली सब को पहले मुकम्मल करना ज़रूरी होता है, अगली सब को खाली छोड़ करके पीछे खड़े होने की गुंजाइश नहीं रखी गई है कि हम जहाँ चाहेंगे खड़े होंगे, हमारे कोई मखसूस जगह हो, ऐसा मस्जिद में नहीं रखा गया। सिर्फ इमाम के लिए एक खास बात है कि इमाम की जगह मुतय्यन होती है, अगर इमाम बाद में भी आया तब भी वो अपनी जगह पर ही आएगा, इसलिए कि उसकी जगह मुतय्यन है, वो अपनी जगह पर आकर के वही नमाज पढ़ाना है तो वो अपनी जगह पर आएगा। बकिया किसी और के लिए ये गुंजाइश नहीं रखी गई है कि उसकी कोई जगह मुतय्यन कर दी जाए, वो जब भी आए बाद में भी आए तो लोग वो जगह खाली कर दें और वहाँ वो आकर के बैठें या जो है वो नमाज पढ़ें, किसी और के लिए ये गुंजाइश नहीं रखी गई। ये तो ये एक बात थी। दूसरी ये बात जो है जिक्र करने के लिए कहा कि कुछ पंपलेट या कुछ चीज़ें पेपर्स ला करके औरतों में तकसीम कर देते हैं। बाज़ मरतबा होता ये है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साबित नहीं होती, अथेंटिक नहीं होती हैं, और मस्जिद में लाके तकसीम करेंगे तो लेकर जाने वाले क्या कहते हैं, ये मस्जिद अबू बकर में मिला हुआ है, तो समझते हैं कि चूंकि पहले दिस मस्जिद है इसलिए जो बात उसमें है वो अथेंटिक होगी, साबित होगी, तो लोगों का ये तसव्वुर हो जाता है। इसीलिए जब तक उसकी पूरे तरीके से तस्दीक ना हो जाए कि वाकई वो बात सही है जो तकसीम की जा रही है, वो पंपलेट सही है, उसमें जिक्र की गई बातें सही हैं, तब तक किसी भी खातून को कोई चीज़ तकसीम नहीं करना चाहिए। उनका अपना ज़ाती मामला है, वो अपने घरों में तकसीम करें, महल्ले में तकसीम करें, अलग बात है। लेकिन जब मस्जिद में तकसीम होती है चीज़, तो मैंने अभी आपसे कहा कि साथ में ये मसला जुड़ जाता है कि ये मस्जिद अबू बकर में तकसीम की गई है, तो इसका मतलब ये चीज़ सही होगी। लोग ये तसव्वुर करते हैं, ये समझते हैं, ये इसीलिए बेहतर यही है कि जब कोई चीज़ तकसीम करनी हो तो पहले उसे देखा लिया जाए, अगर वो वाकई सही है तो तकसीम करने से कौन मना करेगा, अल्लाह के दीन को फैलाने से कभी कोई रोक नहीं सकता। اللہ کے دین کو جتنا پھیلایا جائے اتنا اچھا ہے، لیکن صحیح دین پھیلانا یہ تو ضروری ہے، اس لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پھر میں اپنی بات کی طرف لوٹتا ہوں، شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو معاملہ تھا وہ معاملہ کیا تھا کہ ان کی قوم کے لوگوں میں یہ خرابی تھی کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تھی تو ڈنڈی بہت مارتے تھے، یہ لوگ چیزیں کم کر لیا کرتے تھے، دینے کے ٹائم میں کم کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچنا، جب آدمی سوچتا ہے کہ شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، نہیں، اس معمولی سی چیز کے لیے اس تجارت کی برکت ختم ہو جائے گی، اور جب برکت ختم ہو جائے تو پھر چاہے جتنا بھی ہو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ برکت ہو تو کم چیز بھی بہت فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو، اس لیے کبھی یہ تصور نہیں لانا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اگر بچا لیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے بچاتے جائیں گے تو بعد میں ایک کلو بچ جائے گا تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس ایک کلو بچانے کے چکر میں بہت سے کلو چلے جاتے ہیں، جو ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کبھی کام کرا لیتا ہے کسی سے کچھ، جب اس کا پیمنٹ دینے کا وقت آتا ہے تو پہلے بات کچھ اور کیے رہتے ہیں، بعد میں کچھ کم کرنے کے چکر، کیوں یہ بھی تو کم کرنا ہوا، کم کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ چیز، یہ سوچ جو ہے غلط ہے۔ جب ہم نے کام کرایا ہے، جو مزدوری بنتی ہے وہ پوری اس کے حوالے کر دیں، جو طے کیا تھا وہ پورے طریقے سے اسے دے دیں، اب کم کرانے کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ میری مراد وہ جو بازاروں میں خرید و فروخت میں کم کرانا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یہ اگر کہیں بارگنگ ہوتی ہے تو بہرحال جب کوئی بہت زیادہ مانگتا ہے تو کم کرا کر کے سامان لینا، قیمت کو کم کرانا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایک چیز جو پہلے طے کر لی تھی اور جب وہ تیار کر دی گئی، وہ کام کر دیا گیا، تب ارے نہیں اتنا ہی لو، یا کم کر کے دے دیا، پورا بل نہیں دیا، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اسی کے مقابلے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کام پر رکھ لیا، پورا پیسہ دے دیا پہلے ہی، پورا پیسہ مل جانے کے بعد جو کام ہم سے کرنا چاہیے تھا پورا کام کیے بغیر چل گئے۔ کبھی کام کرنے والوں کی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی طرف سے یہ چیز ہو سکتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سب اسی کا ایک حصہ ہے۔ امانت داری بڑی اہم چیز ہے، امانت داری نہ ہو تو یہ سب مسائل پیدا ہوتے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ چیز تھی، جب شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تو قوم والوں کا جواب کیا تھا، جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، ہم جو چاہیں گے اسی انداز سے چیز ہونی چاہیے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ جو مزاج بنا لیتے ہیں۔ ان کی قوم کے بھی جو اس مزاج کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا شعیب علیہ السلام سے، وہ نواں پارا وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه، ملعون عربی میں کہتے ہیں جماعت کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کی جماعت نے کیا کہا، اور کون سی جماعت یہ، جن کو بڑا تکبر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، اور عام طریقے سے جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے وہ حق بات قبول نہیں کر پاتے، کہا کہ یا شعیب لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک او لتعودن فی ملتنا۔ شعیب یہ بات نوٹ کر لو کہ ہم تمہیں نکال دیں گے اس شہر کے، اس ملک کے، اصل ہم ہیں، ہمارے حکم کے مطابق یہاں چیزیں چلتی ہیں، تمہیں بھی اور تمہارے پیچھے جو آئیں گے، تمہارے جو فالوور بنیں گے، متبعین بنیں گے، جو تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم سب کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ تو ٹھیک ہے، اگر واپس نہیں آئے تو ہم یہاں سے تمہیں निकाल देंगे, उनकी कौम के मुतकब्बिरीन ने ये बात कही। आप जब ये बात पढ़ें सुने और मुख्तलिफ मुल्कों के जो हालात होते हैं आज जरा सोचिए कितनी मुशाबहत है, कितनी इंसानियत है। यानी कुछ चीज पहले हुई है और आज के इस दौर में भी आप देखेंगे कि अगर ये नहीं किए तो फिर किसी और मुल्क का रास्ता दिखाने की लोग धमकी देते हैं। मैं अल्फाज नहीं अदा कर रहा, वही अंदाज होता है जिनके दिलों में तकब्बुर होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है और उससे भरे हुए होते हैं। उनका अंदाज यही होता है, हर जमाने में उनका अंदाज यही रहा है और अहले ईमान के साथ अहले कुफ्र का यही अंदाज हर जमाने में रहा। ये धमकियां हमेशा मिलती रही हैं। अगर सही बुखारी की वो हदीस में आपको याद दिला दूं तो ये सारे अंबिया के साथ हमेशा जो हक परस्त लोग होते हैं उनके साथ ये मसाइल होते हैं। जब पहली वही आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, गारे हिरा में से पहली वही आई, आप थोड़े घबराए हुए थे, तो आपकी बीवी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपको लेकर के जब वरका बिन नौफल के पास गए, तो सही बुखारी में ये जिक्र है, उनके पास गए, उन्होंने बुरी बात सुनी, कहा कि इसका मतलब ये है कि वो तो जिब्राइल है जो आपके पास आए हैं, पहले मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आते रहे और इसका मतलब यह है कि आपको रसूल बना दिया गया है। काश, उसके बाद क्या कहा वरका बिन नौफल, काश मैं जवान होता उस वक्त, मैं जिंदा होता जवान होता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी, तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी, तुम्हें अपने मुल्क से, अपने शहर से जहां तुम पैदा हुए हो, पले बड़े हो, तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ताज्जुब करते हैं, कहते हैं आवा मुखरेजी हूँ, ये लोग मुझे ही निकालेंगे, क्योंकि आप अपने उस इलाके में बड़े महबूब और सबके चहेते थे, सब चाहते थे आपको, लेकिन जब दीन का तौहीद का मामला होता है तो ऐसे ही होता है। आप जानते हैं कि सहाबा को हबशा की तरफ दो मरतबा हिजरत करनी पड़ी, बाद में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने सहाबा के साथ मदीना हिजरत करना पड़ा। ये चीज होती है, जब ये कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवा मुखरिजी यहूम, क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे, बड़े ताज्जुब से आपने कहा, तो वरका ने कहा था उस मौके पर कि हाँ, ये दावत लेकर के जो भी खड़े होते हैं जरूर उनके साथ दुश्मनी की जाती है और उनको इलाकों से निकालने की धमकियां मिलती, तकलीफें पहुंचाई जाती है। ऐसी कौमें भी गुजरी हुई है मेरे भाइयों पहले, कि सिर्फ वो ईमान लाने की वजह से, तौहीद पर कायम होने की वजह से उनको ऐसे ही बीच में आरे से चीर दिया गया, जैसे लकड़ियों को चीर दिया जाता है। लेकिन इतनी सख्त जो है आजमाइश के बावजूद उन्होंने अपना दीन नहीं छोड़ा, अपनी तौहीद नहीं छोड़ा, अपना ईमान नहीं छोड़ा। तो ये धमकियां शुएब अलैहिस्सलाम को वही धमकी, उसमें वो पहली आयत में उसी धमकी का जिक्र है कि या तो घर वापसी कर लो, जैसे जबान मैंने कहा अगर कहें वहां तो ये है, या तो हमारे मिल्लत में वापस आ जाओ नहीं तो हम तुम्हें निकाल देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अजाब भेजा और अजाब इनको पहुंचा तो फिर किसी का पता नहीं, सब की सब उसमें हलाक कर दिए गए। आखिर में मदद अल्लाह की ईमान वालों के साथ होती है और कुफ्र शिर्क पर हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की अजाब की ये बिजलियाँ जो है गिरती हैं। यही तारीख है अंबिया के किस्से, इसीलिए कुरान में जिक्र किए जाते हैं कि हम उसे याद रखें कि जो चीजें पहले हुई हैं, ऐसा नहीं है कि उस दौर में होगी अब दोबारा नहीं होगी। तारीख अपने आप को दोहराती है, वो चीजें बाद में भी होती रहेंगी, चीजें होती रहेंगी। ईमान वालों का, इनके ईमान का तकाजा ये है कि अपने ईमान पर बाकी रहें। आजमाइशें आएंगी, सख्त से सख्त आजमाइश हो, लेकिन अपने ईमान पर बाकी रहें, अपने ईमान को महफूज रखें, उसको सलामत रखने की कोशिश करें, और कभी किसी की धमकी की वजह से अपने दीन का थोड़ा हिस्सा भी, दीन छोड़ना तो खैर दूर की बात है, दीन का कोई मामूली हिस्सा भी किसी की धमकी की वजह से हम छोड़ नहीं सकते, हुए हम उस दीन के पाबंद है। ये बात थी जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा। बीच में एक दूसरी बात आ गई जिसकी वजह से बात इसी में लंबी हो गई। आगे वाली कुछ बातें थी जो आपके सामने जिक्र करनी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल का खास तरीके से उसी के बाद काफ़ी लंबा जिक्र है। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें उनके ऊपर अपनी नाजिल फरमाई और कितनी नाशुक्री कौम थी ये, हमेशा वही नाशुक्रापन उसका रहता था। ताज्जुब होगा आपको, इसी सूरह इसी जो है पारे के अंदर ये जिक्र किया गया कि फिरौन जो उनके ऊपर बहुत जुल्म करता था, उनकी आंखों के सामने अल्लाह तबारक व ताला ने फिरौन को दरिया में डुबो दिया, उसकी पूरी फौज को इन्हें नजात दे दी। इतनी बड़ी जो है नेमत अल्लाह ताला की। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर के आगे जा रहे थे, तो बनी इसराइल की इस कौम ने देखा कि कुछ लोग हैं जो बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, वहीं पर झुके हुए हैं। तो मुतालबा कर दिया, जैसे इनके माबूद हैं आप हमारे लिए भी बन दीजिए, इजाल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, जैसे इनके माबूद हैं आप हमारे लिए भी माबूद हैं। एक अल्लाह को छोड़ करके जिस अल्लाह ने ऐसी नेमतें दी, दूसरी माबूदों का मुतालबा उन्होंने शुरू कर दिया। इतनी नाशुक्री कौम, मूसा अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया कुहेल तूर पर, और वो 40 जो है दिन की जो है वो मुद्दत थी, उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लोगों की निगरानी और लोगों की तरबियत के लिए छोड़ रखा था। इतनी छोटी सी मुद्दत में भी कौम शिर्क में मुबतला हो गई। बनी इसराइल का ये की जो कौम, अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में हमारे इस मुल्क में एक कौम है, दोनों में बड़ी मुशाबहत है, बड़ी मुशाबहत है। अगर आप देखेंगे, मैं नाम लिए बगैर वो बात जिक्र कर दिया हूँ, आप समझ गए, मैं बड़ी जो है मुशाबहत पाई जा रही है। इसलिए जब वो पढ़ते हैं तो ये चीज़ें जो यहाँ होती हैं वो हमें याद आ जाती हैं जो है। तो ये सब जो है मसाइल कुरान में जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारे उस ईमान में ताजगी आनी चाहिए, ईमान में इजाफा होना चाहिए। वक्त चूँकि हो रहा है इसलिए आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। बात जो अहम बातें इंशाल्लाह कल के दर्स में उसकी तरफ इशारा करेंगे। इसी पर आज का दर्स ख़त्म करते हैं। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।